پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں تو یہی سیدھے راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ لعنت کر دے، پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے، پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ دعا کیجیے اللہ آج ہمیں بھی حکمت دے دے اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ اے اللہ ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل کر، اور اللہ ہمیں اس سے منہ نہ موڑے، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آنکھ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم یقیناً انہیں آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ آج سائنسدانوں نے اور ڈاکٹرز نے یہ بتا دیا کہ جلنے کا سارا عذاب سکن کو ہوتا ہے، درد۔ جب کوئی جلتا ہے، جب تک سکن جلتی ہے اس کو درد ہوتا ہے، سکن ختم ہو تو درد ختم ہو کے پھر اندر کی سیپٹکس شروع ہو جاتی ہیں۔ جہنمیوں کی جب ایک جلد جل جائے گی، اللہ اس کی دوسری جلد آئے گا، پھر تیسری، مسلسل۔ اور روایات میں تھے کہ کھالوں کے بدلنے یعنی سکنز کے چینج کرنے کا عمل ایک دن میں 70-70 بار ہوگا۔ سوچیے ایک جلا ہوا بندہ پھر 69 ٹائم پھر جلے تو کیا تکلیف ہوگی، اور یہ ریالٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آج ایک اور شوشہ دیا، جہنم از سو کے اس میں نہیں نہیں وہ بس ایسے ہی اللہ نے اپنا اینگر شو کیا، اٹ فزیکلی بینگ یہ ہے۔ آج اس کا خیال آئے گا نا تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا آسان لگے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اور جن لوگوں نے ایمان لا کر ہماری آیتوں کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ دعا کریے اللہ ہمیں ایسی جنت پہ جگہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، خیانت کرنا ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ صاحب امر کون ہوتے ہیں؟ کسی بھی جگہ کی مینجمنٹ، آپ کسی ادارے، مسجد، اسکول، ہاسپٹل، جگہ، ہوٹل یا کسی بھی جہاز میں جاتے ہیں، جو مینجمنٹ کہے اس کو مانیں۔ آج ہمارے امت میں یہ خیال چلا گیا، ہم پابندیوں کا اپنے اوپر تھریٹ فیل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے یہ رول نہیں ہے۔ تو رولز کو ماننے والی قومیں ہی آگے سے آگے جاتی ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک طریق صحیح طریقے کار ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ دینی معاملوں میں جب کسی کو کوئی اختلاف پیش آئے تو اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ لے۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیے آیتیں تو مدینہ کے یہود کے بارے میں، لیکن آج مسلمانوں پہ فٹ ہوتی ہیں۔ نام کیا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن زندگی کے فیصلے طاغوت سے، غیر اسلامی طریقوں کی طرف جاتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے، حالانکہ طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر آہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ یہ ان مسلمانوں کی بات ہے کہ جو اسلامک لاز، جو اسلامک طرز کو چھوڑ کر نان اسلامک چیزوں کو اس سوچ سے اپناتے ہیں، نہیں پھر ہم اسیمیلیٹ کریں گے، نہیں پھر ہم الگ نہیں رہیں گے، پھر ہم نون کے نقطے نہیں بنیں گے۔ تو جب وہ اسلام کو ڈیلیوٹ کر کے غیر اسلامک چیزوں کو لے کے آتے ہیں، پھر اللہ کی اس طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری نیت یہ کہ سب مل کے رہو۔ دیکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کے دور میں نعرہ ہے نا، پیس میکر، پیس میکر، सब रिलीजन्स को ब्लेंडर में डाल के एक स्मूदी बना और सबको दे दो, तुम अपने दीन पे, तुम आप पे, तुम अपने, और सब खुश रहे। सब खुश नहीं रहते। अगर ये रेसिपी होती तो अल्लाह के नबी मदीना में आजमाते, मक्का में आजमाते। अगर अल्लाह के नबी आए अरबों के कल्चर को मान लेते तो इतनी 13 साल की परसिक्वेशन क्यों होती? अगर अल्लाह के नबी यहूद के कल्चर को मान लेते तो 10 साल में इतनी जंगें क्यों होती? ये बिल्कुल नॉन इशू था जिसको आज इशू बनाकर ऐसे पेश किया कि जो सही बात करता है वो गलत है, ये बहुत अच्छे हैं पीस मेकर है। छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, हालांकि वक्त गुंजाइश नहीं देता, लेकिन हम सबके लिए जरूरी है। आप देखिए कि एक शहर में रहने वाले आप और मैं कहीं भी, इतने में एक खबर मिलती है कि शहर पानी की जो पाइप्स हैं जहां से हम सब पानी लेते देते हैं दिन भर, उसके अंदर गटर की का पानी मिल रहा है। अब कोई इंजीनियर, कोई जियोलॉजिस्ट ये डिस्कवरी जब करता है तो फिर उसके बाद क्या हो कि वो कहते हैं कि अब इसको हल करें, इससे तो जरासीम पैदा हो रहे हैं और दिस एंड दैट हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? वो कहेगा 3 दिन तक शहर का पानी बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम पानी की पाइपें ठीक कर देंगे। अब ये बात तो उनकी बड़ी इसलाह के साथ है, लेकिन नतीजा क्या निकला कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, वी शुड डू दिस, कोई बात नहीं, 3 दिन की बात है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और वो कहते हैं इट्स ओके डू इट। कुछ दूसरे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हम ये कुर्बानी नहीं दे सकते, ऐसे ही रहने दो। किसी को कौन सा पता है कि इधर क्या हो रहा है? अब मुझे आप बताइए, दोनों में इख्तलाफ हुआ कि नहीं हुआ? अब इस झगड़े और इख्तलाफ के बाद उनकी मान ली जाती है जो कहते हैं करो दे करो, जो नहीं मान रहे उनकी ना सुनो। थोड़ा सा मिसचीफ हुआ ना, डिसऑर्डर हुआ, लेकिन जू ही इन्होंने उनको पीछे डालकर पाइपों को ठीक किया, पानी बंद हुआ, रोए चीखे चिल्लाए, 1 हफ्ते के बाद पूरे शहर को साफ पानी जाएगा। ये है हल। इमेजिन कीजिए कि आज के दौर को आप सामने रखिए कि जो लोग इस्लाम पे अमल करते हैं, इस्लाम को कंप्लीट वे ऑफ लिविंग दिखाते हैं, दूसरे नहीं दिखाते, दूसरों को दिखता नहीं है, वो कहते हैं देखो जो स्टाइल तुम्हारा उसमें कुरान की रोशनी में बहुत जरासीम पैदा हो गए, थोड़ा सा इसको करो, तो वो झगड़ा उस अमन से बहुत बेहतर। अगर इस सारे इशू को दबा देते, चुप चुप सब चुप, गंदा पानी पियो तो सारे मर जाते, अचानक सब में नहीं होता तो ऐसा ऐसा सबके अंदर बीमारियां आती और सारे परेशान हो जाते। तो थोड़ा सा झगड़ा अगर घर में आता है, झगड़ा नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, क्रॉस क्वेश्चनिंग कह लें, नई नई किताब जिसकी जिंदगी में आ रही है उसके घर में मसाइल उठेंगे, बर्दाश्त कर, ये इस्लाम का तरीका। थोड़े दिन के बाद आपकी फैमिली, आपकी दोस्तें, आपके खानदान कबूल कर लेंगे कि हमारे लाइफस्टाइल में ये कमी थी, अब नहीं होगी, अब हम ऐसे करेंगे, ऐसे जिएंगे। 1 साल 6 महीने आप थोड़ा सा फील कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच सके नहीं, चुप चुप चुप, तो फिर चुप चुप का तो यही है कि फिर कुरान का तर्जुमा की तो जरूरत भी नहीं थी, हम बैठ के घर में इतने वक्त में तुम 5 सपारे पढ़ लेते जितने में हम 1 सपारा पढ़ रहे हैं। तो ये चुप चुप नहीं, आज उम्मत मुस्लिमा को ये दिन दिखाया कि हमारा दीन कई मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ बन गया। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है, इनसे तारुस मत करो और इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो कि जो इनके दिलों में उतर जाए। ये है इस वक्त करने का काम। हाईलाइट कीजिए कौलम बलीगा। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जो स्कॉलर्स हैं ना और जो मजहबी रहनुमा है, उनको लोगों को ऑफेंड करने, थ्रेट करने, चीखने, यन करने और इस तरह की बातों की बजाय कौलन बलीगा, सॉफ्ट बात दिल में उतर, हो हक जुबान पे, अंदाज नरम हो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नुकसान क्या हो रहा है आज? जिनके पास हक है वो बहुत चीख के बोलते हैं, बहुत गुस्से में बोलते हैं, शाउटिंग स्टाइल। बच्चे भी पूछते हैं अम्मी मौलवी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं दीन के नाम पे, उनके पास हक कोई नहीं है, उन्होंने वही पोल्यूटेड किस्म की चीजों को मिलाया हुआ है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, दुआ करे अल्लाह हमें उन लोगों से मिला दे कि जो अकायद में कुरान और सुन्नत में हो, अपनी सारी नस्बतें अल्लाह और उसके रसूल से रखें, लेकिन उनकी जुबानें ना रहो, वो पढ़े लिखे अंदाज से लोगों की बेइज्जती किए बगैर, उनको शर्मसार किए बगैर दीन सिखाए, उनको टॉन्ट ना करें, लोग उनके पास आते हुए शर्माए ना कि हम इन कपड़ों में तो आ ही नहीं सकते, हम इस हालिए में तो नहीं आ सकते। क्यों भाई, आपको क्या हक पहुंचता है? वो बाहर जा सकता है तो आपके पास क्यों नहीं आ सकता? बाज लोगों ने दीन सीखने के लिए ऐसी पाबंदियां लगा दी कि वो फिर चंद लोग जो हिजाब जुबाए में स्टाफ में लपटे में वही जाते हैं, वो कहते हैं दूसरे तो जा ही नहीं सकते। तो याद रखिए, दीन की महफिलें और दीन वाले खुले दिल के लोगों ने चाहिए, वासियुन अलीम, दो खूबियां, वुस्सत कल्बी और इल्म होना, तो दो चीजों का मजमुआ क्या है? कौलन बलीगा। फिर बात दिलों में उतरती है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी बातों में असर डाल दे। वमा अरसलना, ये आयत भी बड़ी अहम है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और कोई रसूल भी हमने जो भी भेजा, इनको बताओ हमने जो रसूल भी भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म के साथ इसकी इताअत की जाए। ये भी एक खूबसूरत नुक्ता है। रसूलों की आमद का मकसद कि उम्मती उनकी इताअत करें। हम कहते हैं जश्न आमद रसूल, फूल पेश करो, तोहफे दो, ये और बात है। अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत में नात भी पढ़नी है, उनके ऊपर दुरूद भी भेजने, लेकिन इताअत को नहीं भूलना। इताअत छोड़कर जब ये काम करते हैं तो गड़बड़ होती है। फरमाया अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते थे तो आपके पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते, तो रसूल भी इनके लिए माफी की दरख्वास्त करते, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाते। अल्लाह बहुत मेहरबान है, कभी उसको अपने से दूर ना समझें। फिर इसके बाद यह अहम आयत, इसको हाईलाइट कीजिएगा, फला व रब्बिक ला युमिनून। मेरे और आपके लिए क्राइटेरियन है क्या? नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये आपको फैसला करने वाला ना मान जाए। लीस्ट यानी जिसका मतलब कि अल्टीमेट अथॉरिटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसी चीज को ओके करेंगे तो वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। फिर जो कुछ फैसला आप कर दें, इस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें। उम्मत मुस्लिमा को मशवरा दिया जा रहा है कि सुन्नतों पे ऑफेंड ना हुआ करो। दाढ़ी, मिसवाक, टोपी और इस तरह की चीजें और हिजाब और इस तरह की चीजों को सुनकर दिल तंग ना करो, बस अपनी चॉइस बदल लो। दैट सिर्फ, तुम्हें ये सब अच्छा लगेगा, बल्कि सर बसरे तस्लीम कर लें। अगर हमने इन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इनको की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते हैं तो इनके लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा साबित कदमी का मूजब होता। क्या पता चला कि जब अल्लाह के हुक्मों पे अमल किया जाता है तो साबित कदमी मिलती है, फॉर्म हो जाता है इंसान, और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। चाहिए, आज साबित कदमी की कमी है, हम फॉर्म नहीं रहते। चंद दिन कोई काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, हम स्टैंड नहीं ले पाते इस्लाम पे। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम आज इस्लाम के लिए खड़े होते हो हम तुम्हें अजर भी देंगे, इनको सीधा रास्ता दिखा देते हैं। जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। इस सूरत फातिहा की आयत का जवाब है। हम कहते हैं इहदिनस सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोगों का रास्ता दिखा, तो यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि इनाम किन पे होगा? नबियों, सिद्दीकों, शुहदा और सालिहीन पे। अल्लाह ताला हमें इन सब का साथ नसीब करे। ये कैसे अच्छे दोस्त हैं जो किसी को भी मुयस्सर आए। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। करो क्या या अय्युल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। क्यों भाई? इसलिए कि दुश्मन भी तो हर वक्त तैयार है तुम्हें मारने के लिए। क्या को ना 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 तैयारी बिल्कुल ना करो, डोंट मेक वेपन्स और बस सो जाओ? नहीं, कहा फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे। हाँ, तुम में कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है? कौन? मुनाफिक। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया, यानी अल्लाह के रास्ते से रुकने पे खुश होता है। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल होता, यानी कोई फतह मिल जाती, माल मिलता, और इस तरह कहता गोया कि तुम्हारे और इसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई ताल्लुक ही ना था, कि काश ही मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए इन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर दें। फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा, क्या होगा? लोग उसको टेररिस्ट कहेंगे, उसको मुस्लिम कहेंगे, फंडो कहेंगे? नहीं, हम इसे जरूर अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। 3 सेकंड तक इन आयतों पर गौर करें। आज कहीं कोई ऐसी पुकार है जो हमारे कानों तक पड़े? जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। हर बंदा फाइट कर रहा है आज, कोई अपने हकूक के लिए, कोई अल्लाह के रास्ते में, कोई नफ्स के लिए, कोई शैतान के लिए, कोई अल्लाह के लिए। अगर नेकियां फैलानी मुश्किल है तो गुना फैलाने भी कोई आसान तो नहीं है। एक फिल्म जब बनती है कितनी जान जोखों में डाल के खुद को बनाते हैं। तो जिनके पास हक हो उनको अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते वक्त तो स्माइल करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपने रास्ते में लड़ने वाला बना दिया। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें नहायत कमजोर हैं। तुमने लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और जकात दो। अब जो इन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो इनमें से एक फरीक का हाल यह है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा अल्लाह से डरना चाहिए या इससे भी कुछ बढ़कर। मक्का के 13 साल इसे एक आयत पे अमल हुआ था, कुफ दिया को आपने कुछ नहीं करना मार को, क्योंकि तैयारी नहीं थी। इसमें उम्मत वसत को एक लेसन है, जब तक तैयारी पूरी नहीं है किसी मैदान में कूदो नहीं। इस वक्त तुम्हें अभी एक उम्मत तैयार करनी है, अभी वो सोच पैदा करनी है जिसके ऊपर लोग लड़ें और अल्लाह ताला मदद करे। तो साहब हमें इतना डिसिप्लिन था, खामोश रहे, इजाजत मिली तो हाथ उठे, इससे पहले इजाजत हाथ नहीं उठाएंगे। फरमाए कैसे लोग कौन है जो कहते हैं खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया, क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी होती। इनसे कह दो कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सरमाया बहुत थोड़ा है। वला आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत तो अल्लाह से डरने वाले इंसान के लिए बहुत बेहतर है। वला तुज़लमु नफतीला, तुम पर एक धागे बराबर जुल्म ना किया जाएगा। सोचिए 2 सेकंड, दुनिया थोड़ी आखरत ज्यादा, दुनिया टेम्परेरी आखरत परमानेंट, किसके लिए मेहनत करना है, किसके लिए जिए।